हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कबीर को पता चल गया था कि तारा ध्रुव तक पहुंच चुकी है। अब उसे तारा को अगले कदम के लिए गाइड करने की जरूरत थी, क्योंकि तारा के लिए इस तरह का मिशन पहली बार था। वहीं तारा इस समय वीर, अलीजा और अलीशा के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आई हुई थी। ये प्लान अलीशा ने बनाया था, वरना अलीजा कभी तारा के साथ नहीं आती। तारा जब रेस्टोरेंट के अंदर आई तो उसे एक वेटर ने इशारे से वॉशरूम में आने को कहा। तारा समझ गई थी वो कोई उसी की टीम का मेंबर हो सकता है। वहां बैठने से पहले तारा ने उनसे कहा, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। रुको, अलीजा ने उसे रोकते हुए सख्त आवाज में कहा, मुझे तुम पर यकीन नहीं है और मैं तुम्हारे साथ बाथरूम में चलूंगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आ सकती हो, तारा ने खुद को सामान्य दिखाते हुए जवाब दिया। अलीजा ने उसे देखकर आंखें घुमाई और उठकर उसके साथ जाने को हुई। तभी अलीशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारा बस चले तो टॉयलेट के अंदर भी इसके साथ जाओ। हाँ, क्योंकि जरूरी है, चाचू ने इसे ऐसे ही हमारे घर पर रहने की इजाज़त नहीं दी है, उन्हें डाउट था, इस पर नज़र रखनी है, अलीजा बोली। चाचू का नाम लेकर कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश मत करो, उन्होंने ये काम ध्रुव को दिया था। जब ध्रुव को तारा पर यकीन हो गया है तो तुम बेवजह क्यों उसे परेशान कर रही हो, अलीशा उसे डांटते हुए बोली। फिर उसने तारा की तरफ देखा और कहा, तारा तुम बाथरूम होकर आ सकती हो, उतनी देर में हम खाना ऑर्डर करते हैं। अलीशा के इस कदम पर तारा ने राहत की सांस ली। उसने मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहा और वो जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। तारा फीमेल बाथरूम की तरफ जाने के बजाय वेटर के कहे मुताबिक मेल बाथरूम में जा रही थी। हालांकि उसके ऐसा करने पर आसपास के आदमी उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, लेकिन कबीर ने बाथरूम पूरा खाली करवा रखा था। जैसे ही तारा अंदर गई, उसे सामने कबीर दिखाई दिया, जो एक बूढ़े आदमी की तरह लग रहा था। कबीर को इस तरह अपने सामने देखकर तारा के चेहरे पर हल्के घबराहट के भाव आ गए। वो समझ गई थी कि शायद कबीर को उसके माफिया फैमिली में इन्वॉल्व होने की बात पता चल चुकी है। तारा कुछ कहती उससे पहले कबीर उसके सामने आया और उसके दोनों कंधे पकड़कर मुस्कुराकर बोला, वेल डन तारा, मुझे पता था कि तुम ये कर लोगी। आज तक कोई बाहर वाला युग राणा की फैमिली में इस तरह शामिल नहीं हो पाया है जिस तरह तुम हुई हो, ऊपर से तुम उसके घर पर रह रही हो। कबीर की बातें सुनकर तारा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आपने युग राणा का नाम लिया सर, आपने पहले ही कहा था कि आपको माफिया किंग और उनकी फैमिली के बारे में कोई हिंट नहीं है, फिर आप कैसे जानते हैं कि युग राणा ही माफिया किंग है? तारा की सवाल करने पर कबीर कुछ पल के लिए शांत हो गया, फिर वो गहरी सांस लेकर बोला, मैं बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन उनकी जो रेप्यूटेशन है उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। अगर मैंने खुलेआम जाकर युग राणा का नाम भी लिया तो हमारी अथॉरिटीज़ में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उसे बचाने के लिए सामने खड़े हो जाएंगे, बस तभी मैं ये मिशन करना चाहता हूँ। आप करना चाहते हैं इससे क्या मतलब है, आपको ये काम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला है? तारा ने चौंकते हुए पूछा। देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें गवर्नमेंट कोई काम करने को दे या फिर हम खुद से ही इस गंदगी को साफ करने की कोशिश करें, मकसद एक ही है कि हमें समाज को उन जैसे घटिया लोगों से आज़ाद करना है, कबीर तारा को समझाते हुए बोला। आपके लिए फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मेरे लिए पड़ता है, मैं गवर्नमेंट के लिए काम करती हूँ, आपकी कोई प्राइवेट एम्प्लॉई नहीं हूँ। मुझे अफसोस हो रहा है कि आपने अपने पर्सनल दुश्मनी के चलते मेरा यूज़ किया, उन्हें सच पता चलने पर वो मेरी जान ले लेते तो, तारा ने गुस्से में बिफरते हुए कहा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता, रही बात मेरे पर्सनल मिशन होने की, तो एक ना एक दिन सबूत इकट्ठा होने पर मैं गवर्नमेंट के सामने ही वो सबूत लेकर जाने वाला हूँ, थोड़े ना उन्हें खुद सजा देने के लिए निकल जाऊंगा, कबीर ने जवाब दिया। तारा के चेहरे से साफ था कि कबीर की बातें उसे कन्विंस नहीं कर पाई थी। उसने गहरी सांस ली और भारी आवाज में कहा, आप अपने प्राइवेट मिशन के लिए किसी और को सिलेक्ट कर लीजिएगा, मेरी वजह से ऑलरेडी कई लोग मुसीबत में आ गए हैं, मुझे उन्हें बाहर निकालना है और खुद वहां से आज़ाद होना है। इतना कहकर तारा जाने को हुई, तभी कबीर ने पीछे से कहा, तुम वो तारा नहीं हो जो क्राइम को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, मत भूलो तारा वो लोग कौन है, उनकी मासूम शक्ल पर मत जाओ, अक्सर खूबसूरत चेहरे सबसे ज्यादा धोखे देते हैं, न जाने उन्होंने कितने मासूम लोगों की जान ली होगी। कबीर की बात सुनकर तारा गुस्से में उसकी तरफ पलटी और तेज आवाज में कहा, एक भी मासूम की जान नहीं ली है उन्होंने। वेरी गुड तारा, तुम पर भी उनका असर हो ही गया। सालों पहले कृषा सिंघानिया, जो माफिया फैमिली की होने के बावजूद इतनी मासूम थी कि इन सबसे दूर रहती थी, वो तक उनके जाल में फंस गई, तो तुम्हारा तो क्या ही कहूँ, तुम तो उस दुनिया का हिस्सा भी नहीं हो, कबीर ने सार्कास्टिकली सर हिलाकर कहा। वो बातों ही बातों में तारा को ताने दे रहा था। तारा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं किसी के जाल में नहीं फंसी हूँ, अगर ऐसा ही है तो साबित करो, कबीर ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा। तारा को अब तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, वो जानती थी कि कबीर उसे कोई भी काम दे दे, लेकिन ध्रुव इतना स्मार्ट था कि वो कभी अपने पीछे सबूत छोड़ता ही नहीं था। तारा वापस कबीर के पास आकर बोली, उन्हें ट्रैक करना इतना आसान नहीं है, वो अपने पीछे कभी कोई एविडेंस नहीं छोड़ते हैं और ना ही कोई गलती करते हैं, ये बात तो मैं पहले से ही जानता था, अगर वो अपने पीछे कोई सबूत छोड़ते तो अब तक पकड़े नहीं जाते क्या, कबीर ने जवाब दिया। तो आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं, तारा ने पूछा। उसे कबीर के इरादे समझ नहीं आ रहे थे, अब तो उसे राणा फैमिली से ज्यादा खतरनाक कबीर लग रहा था, जिस पर उसने इतना यकीन किया वो भी अपने चेहरे पर एक नकाब लगाए बैठा था।
ध्रुव राणा को जान से मार दो, युग राणा के बाद लेगेसी वही संभालने वाला है। ध्रुव के मरने के बाद माफिया वॉर शुरू हो जाएगा और सब एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। इसका फायदा हम उठाकर माफिया की दुनिया की जड़ों तक पहुंचेंगे और इसे पूरी तरह खत्म कर देंगे। कबीर ने उसे पूरा प्लान समझाया, जिसे सुनकर तारा एक पल के लिए वहीं पर फ्रीज हो गई थी। तारा को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। उसने कबीर की तरफ कड़वाहट से मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तो हमेशा से आपका प्लान यही था? पहले भी आप सबूत ढूंढने के नाम पर मुझे उस तक पहुंचकर उसे जान से मारना चाहते थे ना? हाँ, मेरा प्लान हमेशा से यही था। तुम्हें बताता तो तुम कभी हाँ नहीं कहती। मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मरने से डर नहीं लगता, लेकिन आज तक तुमने अपने हाथों में किसी की जान नहीं ली है, तुमसे ये हो ही नहीं पता। कबीर ने जवाब दिया, अगर मुझसे क्या नहीं हो पता तो फिर मुझे ही क्यों चुना आपने? तारा ने चिढ़कर कहा। क्योंकि तुम्हारे अलावा ये कोई नहीं कर सकता था। खुद को तैयार करो तारा, मुझे अच्छे से पता है ध्रुव राणा 15 दिनों के लिए इंडिया से बाहर गया हुआ है। वो वापस लौटे तब तक तुम्हें हिम्मत करनी होगी और उसे जान से मारना होगा। तुम्हारे पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है, कबीर ने सख्त आवाज में कहा। तारा ने नामे सिर हिलाया और कहा, किसने कहा मेरे पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है? मैं ये नहीं करने वाली हूँ। तारा ने सीधे सीधे कबीर का काम करने से मना कर दिया था। वो वहां से जाने लगी क्योंकि तारा जानती थी कि जितनी देर वो वहां पर रुकेगी, कबीर अपनी बातों से उसे कैसे ना कैसे करके मनाने की कोशिश करेगा।
तारा दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि कबीर बोला, क्या लगता है तारा अग्निहोत्री, वीर मलिक को जिसे माफिया की दुनिया की चप्पे चप्पे की खबर रहती है, उसे मिली और उसके भाई बहन क्यों नहीं मिल रहे? क्या मार्टिन जैसे नॉर्मल माफिया के ठिकाने इतने हाई क्लास होंगे कि वीर मलिक जैसा आदमी उसे नहीं ढूंढ पा रहा? तारा कबीर की तरह पलटी और गुस्से में उसकी तरफ खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। वो समझ गई थी कि मिली और उसके भाई बहनों को मार्टिन से बचा लिया गया था और अब वो कबीर के कब्जे में थे। तुम अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहे हो, तारा ने गुस्से में कहा। वो ये तक भूल गई थी कि कबीर उसका सीनियर है। तारा के इस तरह बदतमीजी से बात करने पर कबीर ने तेज आवाज में कहा, उम्र, लिहाज, ओहदे, रिश्ते, हर तरीके से मुझसे छोटी हो तारा अग्निहोत्री। अपने सीनियर होने के नाते ना सही, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी होगी। कौन सा आप मेरे सगी भाई हो? यहाँ तो मेरे सभी रिश्तों ने मुझे हमेशा धोखा दिया है, आप तो फिर भी मेरे रिश्तेदार हो, तारा ने नम आंखों से कहा। मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं, तुम्हारे मामा का बेटा हूँ और हमारी वजह से ही आज तुम अच्छे हालातों में हो, कबीर ने जवाब दिया। अगर ये अच्छे हालात है ना मिस्टर अग्निहोत्री, तो मुझे मर ही जाना चाहिए था। समझ नहीं आ रहा माफिया होकर ध्रुव राणा ज्यादा बुरा है या फिर साफ सुथरा काम करने वाला एक सीक्रेट एजेंट कबीर अग्निहोत्री ज्यादा बुरा, तारा ने कड़वाहट से कहा। तुम्हें मुझसे जितनी नफरत करनी है कर लो, कल भी मेरे इरादे अच्छे थे और आज भी अच्छे ही हैं, कबीर ने धीरे से कहा। वो इस तरह तारा का दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन तारा ने उसे मजबूर कर दिया था। तारा की आंखों में आंसू आ गए थे। कबीर आगे बढ़कर उसे शांत करवाना चाहता था, लेकिन तारा ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया था। वो अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ने लगी। क्या तुम मेरा काम करोगी? कबीर ने पीछे से तेज आवाज में पूछा। तारा उसकी तरफ पलटी और भारी आवाज में कहा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन हाँ, फिर एक काम और करना, जिस पल मैं उसकी जान लूं उसी पल आप मेरी जान ले लेना। मेरे साथ भले ही रिश्तों में हमेशा धोखा हुआ हो, लेकिन मैं किसी को धोखा देना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर तारा बाहर आ गई थी। उसने अपने आंसू साफ किए और डाइनिंग टेबल पर पहुंची। उसे देखते ही अलीजा ने उसे घूरते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं लगा दिया तुमने, और आंखें लाल क्यों हैं तुम्हारी, रोकर आई थी क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ, तारा ने बुझी आवाज में जवाब दिया। अलीशा को लगा कि तारा का मूड अलीजा की वजह से खराब हुआ है। वो उसके पास अपनी चेयर खिसकाते हुए बोली, अच्छा इसे छोड़ो, हम सबने ऑर्डर कर दिया है, तुम बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी, मैंने वेटर को तुम्हारे लिए ही रोक कर रखा था। मुझे भूख नहीं है, तारा बोली। वो मुश्किल से अपने आंसुओं को कंट्रोल किए हुए थी। उसने कबीर से कह तो दिया था कि वो ध्रुव की जान ले लेगी, लेकिन वो खुद जानती थी कि वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। तारा के इतने नखरे करने पर अलीजा ने चिढ़ते हुए कहा, अगर भूख नहीं है तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मैंने पहले मना किया था, तुम लोगों को शायद मुझ पर यकीन नहीं है, इस वजह से मुझे अपने साथ लेकर आ गए, तुम लोग खाना खा लो, मुझे सच में भूख नहीं है, तारा ने बेरुखी से जवाब दिया। उसका मूड सच में अपसेट था। अलीशा ने वीर की तरफ देखकर उसे इशारा किया। वो जानती थी कि अगर अब तारा ने कुछ और कहा तो अलीजा सच में उससे झगड़ा कर लेगी। अलीजा तो लड़ने के मूड में आ गई थी, लेकिन तभी उनके पास शब्द और सारा पहुंचे, जो उसी समय रेस्टोरेंट में आए थे। उन सबको साथ देखकर वो दोनों उनके पास आ गए। शब ने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पता था ये एक फैमिली डिनर है। फिर उसने तारा की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, तुम लोगों की नई फ्रेंड है ये? फ्रेंड नहीं डैड, होस्टेज है, युग चाचू ने नजर रखने को कहा तो यहाँ लाना पड़ा, अलीजा ने आइज रोल करके कहा। शब ने तुरंत अलीजा को डांटते हुए कहा, बिहेव योरसेल्फ अलीजा, इस तरह किसी की इंसल्ट अच्छी बात नहीं है। शब्द वहां पर अलीजा को सबके सामने डांटता, उससे पहले सारा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बच्चों को आपस में निपट लेने दो, हम यहाँ अपना प्राइवेट स्पेस एंजॉय करने के लिए आए थे और तुम फिर से बच्चों पर ध्यान देने लग गए।
सारा जबरदस्ती शब्द को खींचते हुए दूसरी तरफ ले गई तो वहीं सब तारा की बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। उसने एक नज़र उन सब की तरफ देखा और फिर दौड़ते हुए बाहर जाने लगी। एक बार सितारा को वही फील हो रहा था कि इस दुनिया में उसका ना तो कोई अपना है और ना ही कोई अस्तित्व। वो गायब भी हो जाती तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा से वो दूसरों की कठपुतली बनकर रही थी। खुद को सेल्फ डिपेंडेंट करने के बाद भी वो कबीर की कठपुतली बनकर रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ उनका डिनर बर्बाद हो गया था तो अलीशा और अलीजा वहां से चली गईं। वीर तारा के साथ गाड़ी में था। तारा रो रही थी और वीर को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने और ध्रुव ने तारा को बुरे से बुरे हालात में भी देखा था, लेकिन वो कभी नहीं रोई थी। आज उसके आंसू वीर को हैरान कर रहे थे। वीर अच्छे से जानता था कि वो तारा से कुछ भी पूछेगा तो वो नहीं बताएगी। वीर ने बिना कुछ बोले ध्रुव को वीडियो कॉल किया। वहीं लंदन में बैठे ध्रुव ने तारा की आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल भी चार चार हुए जा रहा था। आखिर क्या है तारा की शख्सियत? एक बात तो है, अब वो किसी भी हाल में ध्रुव को धोखा नहीं देगी, लेकिन उसकी सच्चाई जानकर क्या ध्रुव उसे माफ कर पाएगा?